नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे अमेरिकी दार्शनिक की विचार यात्रा पर निकल रहे हैं जिनके काम ने तर्क, भाषा और ज्ञान को देखने का हमारा नजरिया कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं विलार्ड वैन ऑरमन क्विन की। WVO क्विन के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं।
बिल्कुल।
क्विन, जिनका समय था 1908 से 2000, वो महज एक अकादमिक विचारक नहीं थे। उनकी सोच में एक तरह की बौद्धिक क्रांति छिपी थी। उन्होंने वो जो दर्शन और विज्ञान के बीच एक पारंपरिक सी दीवार थी ना, उसको गिराने की कोशिश की।
अच्छा।
और खासकर जो विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिक फिलॉसफी की धारा थी, उसको एक नई दिशा दी उन्होंने।
तो आज की हमारी इस ज्ञान गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि क्विन के जीवन, उनके कुछ बहुत ही प्रभावशाली और कभी कभी तो चौंकाने वाले विचारों को समझे।
हाँ।
और ये भी देखे कि आज के दौर में उनके ये विचार कितने मायने रखते हैं, कितने प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्विन जब सोच रहे थे, लिख रहे थे, वो दौर कैसा था? मतलब किस माहौल में उनके विचार पनप रहे थे?
देखिए, क्विन का काम मुख्य रूप से 1930 से 1990 के दशक के बीच सामने आया, और ये वो दौर था जिसे हम विश्लेषणात्मक दर्शन का स्वर्ण युग कह सकते हैं।
स्वर्ण युग?
हाँ, मतलब उस समय यूरोप में तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जिसे कहते हैं, उसका काफी जोर था। गणितीय तर्क का प्रभाव दर्शन पर बढ़ रहा था, और ज्ञान क्या है, भाषा कैसे काम करती है, इन सब पर बड़ी गहरी और कभी कभी तो तीखी बहसें चल रही थी। दर्शन ज्यादा तकनीकी होता जा रहा था, ज्यादा वैज्ञानिक तर्क वितर्क की ओर जा रहा था।
और दुनिया में क्या चल रहा था, मतलब बड़ी घटनाएं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, इन सबका उनके काम पर, उनकी सोच पर क्या असर पड़ा होगा?
असर तो पड़ा ही होगा, जाहिर है। उनका जो बौद्धिक विकास हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के साये में ही हुआ।
अच्छा।
बल्कि विश्व युद्ध के दौरान तो 1942 से 46 तक उन्होंने अमेरिकी नौसेना के खुफिया विभाग में काम भी किया। लेफ्टिनेंट कमांडर थे वो।
अरे वाह, खुफिया विभाग में?
हाँ, और कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो लॉजिकल स्किल्स थीं, उनका इस्तेमाल जर्मन पनडुब्बी कोड्स को समझने में किया।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है।
तो इस अनुभव ने यकीनन उनके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे और विज्ञान की तरफ उनका जो झुकाव था, उसे और पक्का किया होगा।
सही बात है।
और फिर शीत युद्ध का तनाव, अमेरिकी अकादमिक जगत का दुनिया में बढ़ता दबदबा, ये सब भी उस समय एक ही सच्चाई थी।
ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे जीवन के अनुभव सोच को आकार देते हैं। नौसेना का काम और फिर दर्शन, अनोखा मेल है। अच्छा, उनके बौद्धिक दायरे में कौन लोग थे, मतलब किनसे वो प्रभावित हुए और किनसे उनकी कह सकते हैं वैचारिक टक्कर हुई?
हार्वर्ड में तो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड उनके गुरु थे, लेकिन उनकी सोच पर जो सबसे गहरा शुरुआती असर पड़ा वो वियना सर्कल और रुडोल्फ कार्नैप का था।
हाँ बिल्कुल,
1932-33 की अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वो उनसे मिले।
लेकिन मजे की बात यह है कि बाद में कार्नैप ही उनके सबसे बड़े बौद्धिक प्रतिद्वंद्वी भी बने।
अच्छा।
हाँ, कार्नैप की कई मान्यताओं को क्विन ने सीधी चुनौती दी।
और उनके समकालीन दार्शनिकों में डोनाल्ड डेविडसन, हिलरी पटनम, डैनियल डेनेट, नेल्सन गुडमन, ये सब बड़े नाम शामिल हैं। इन सब के साथ मिलकर ही उन्होंने उस दौर के विश्लेषणात्मक दर्शन के परिदृश्य को घड़ा।
चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं उनके शुरुआती जीवन की तरफ। एक्रॉन, ओहायो में जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय मेथोडिस्ट परिवार में, पिता इंजीनियर थे, माँ गृहिणी। क्या बचपन से ही कोई दार्शनिक रुझान दिखता था?
सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन हाँ, गणित, भूगोल और भाषाओं में उनकी रुचि बहुत गहरी थी बचपन से ही।
भूगोल और भाषाएं भी?
हाँ, कहते हैं कि वो नक्शे बनाने के बड़े शौकीन थे। कौन जाने, शायद ही उनकी बात की यात्राओं और जो उनकी व्यवस्थित सोच थी उसका शुरुआती संकेत
हो सकता है। हाँ, वियना सर्कल और कार्नैप से मिलना,
बिल्कुल, वो उनके लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। उसी ने उनके दार्शनिक सफर की दिशा तय कर दी कह सकते हैं।
तो अब आते हैं मुद्दे पर, क्विन के बड़े विचार। वो कौन सी बुनियादी मान्यताएं थी जिन पर उनका पूरा दर्शन टिका हुआ था?
मेरे ख्याल से क्विन के दर्शन की नींव में तीन मुख्य विचार हैं। पहला प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, दूसरा समग्रतावाद, होलिज्म, और तीसरा भौतिकवाद, फिजिकलिज्म।
ठीक है, एक एक करके समझते हैं। प्रगतिवाद से क्विन का क्या मतलब था?
प्रकृतिवाद का सीधा सा मतलब है कि दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो विज्ञान से ऊपर हो या उससे बिल्कुल अलग हो।
अच्छा।
क्विन मानते थे कि दर्शन एक तरह से विज्ञान का ही विस्तार है, या यूं कहें कि उसके साथ कदम मिलाकर चलने वाला साथी है। ज्ञान पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका वैज्ञानिक पद्धति ही है। और दार्शनिक सवालों को भी हमें इसी वैज्ञानिक समझ के दायरे में रख कर देखना चाहिए। उनका एक मशहूर कथन भी है, विज्ञान का दर्शन ही पर्याप्त दर्शन है.
फिलॉसफी ऑफ साइंस इज फिलॉसफी इनफ.
यानी दर्शन को आइवरी टावर से निकालकर असल दुनिया और विज्ञान के करीब लाना.
बिल्कुल.
और दूसरा विचार समग्रतावाद या होलिज्म.
हाँ, ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है, होलिज्म.
ये बहुत ही दिलचस्प विचार है. क्विन का कहना था कि हमारा ज्ञान जो है वो अलग अलग बिखरे हुए विश्वासों का ढेर नहीं है.
तो फिर कैसा है?
बल्कि एक आपस में गुंथे हुए विश्वास के जाल, वेब ऑफ बिलीफ जैसा है.
विश्वास का जाल मकड़ी के जाले जैसा?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए. जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे विश्वास अकेले अकेले अनुभव की कसौटी पर नहीं कसे जाते, बल्कि ये पूरा का पूरा जाल एक साथ अनुभव का सामना करता है.
इसे थोड़ा और समझाइए. मतलब अगर कोई नई जानकारी या अनुभव हमारे किसी एक विश्वास से मेल नहीं खाता तो
वो सिर्फ उसी एक विश्वास को नहीं हिलाता, वो पूरे जाल में एक तरह की हलचल पैदा कर सकता है.
अच्छा.
कल्पना कीजिए मकड़ी के जाले की. अगर किनारे पर कोई कंपन होता है तो उसका असर अंदर तक महसूस होता है ना?
हाँ, होता है.
बस वैसे ही जब कोई नया अनुभव हमारे विश्वासों के जाल से टकराता है तो हम सिर्फ किनारे के किसी एक धागे यानी विश्वास को नहीं बदलते, जरूरत पड़ने पर हम जाल के केंद्र के करीब के धागों में भी बदलाव कर सकते हैं
ताकि पूरा जाल उस नए अनुभव के साथ फिट बैठ जाए.
बिल्कुल सही. ताकि सामंजस्य बना रहे, क्विन ने अपने मशहूर निबंध अनुभववाद के दो हठधर्मिता में यही लिखा था, हमारे बाहरी दुनिया के बारे में कथन संवेदी अनुभव की अदालत का सामना व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक सामूहिक निकाय के रूप में करते हैं.
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विश्वास, चाहे वो हमें कितना भी पक्का क्यों ना लगे, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. अनुभव के दबाव में उसे भी बदलना पड़ सकता है.
हाँ, यही तो इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है.
सच में
क्विन के समग्रतावाद का यही मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से कोई भी विश्वास, यहाँ तक कि तर्क या गणित के नियम भी, जिन्हें हम सबसे ठोस मानते हैं, अनुभव के जबरदस्त दबाव में बदले जा सकते हैं. कुछ भी पवित्र या हमेशा के लिए फिक्स नहीं है.
बाप रे, ये तो ज्ञान की प्रकृति के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली और विनम्र करने वाला विचार है.
है ना? इसने जरूर उस समय के तार्किक प्रत्यक्षवाद की कई धारणाओं को चुनौती दी होगी.
यकीनन. और तीसरा स्तंभ आपने बताया था, भौतिकवाद.
भौतिकवाद तुलनात्मक रूप से सीधा है. इसका मूल विचार है कि वास्तविकता अपने फंडामेंटल लेवल पर भौतिक है.
मतलब सब कुछ मैटर और एनर्जी है.
हाँ, जो कुछ भी मौजूद है वो या तो भौतिक पदार्थ और ऊर्जा से बना है या फिर उन पर निर्भर करता है. हमारी मानसिक अवस्थाएं हों या सामाजिक घटनाएं हों, वो भी अंततः भौतिक प्रक्रियाओं से ही जुड़ी हैं.
ठीक है, ये तो हुए क्वीन के दर्शन के आधार स्तंभ. लेकिन उनके वो कौन से योगदान हैं जिन्हें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी माना जाता है, जिन्होंने दर्शन की दुनिया में सचमुच हलचल मचा दी थी?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा धमाका तो उनका वो था, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक भेद का खंडन.
अच्छा, रिजेक्शन ऑफ द एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन. ये उनके 1951 वाले निबंध में था, अनुभववाद के दो हठधर्मिता.
हाँ बिल्कुल, वो उसका केंद्रीय तर्क था और ये 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक निबंधों में से एक माना जाता है.
पर ये भेद था क्या असल में, और क्विन ने इसे क्यों नकारा? ये सुनने में काफी अकादमिक सा लगता है, पर क्या ये आम समझ के लिए भी मायने रखता है?
ये भेद परंपरागत दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार था. माना जाता था कि दो तरह के सत्य होते हैं, एक विश्लेषणात्मक,
जो परिभाषा से सच होते हैं, जैसे सभी कुआरे अविवाहित हैं.
बिल्कुल, इन्हें जानने के लिए दुनिया को देखने की जरूरत नहीं, बस शब्दों का मतलब पता हो. और दूसरे संश्लेषणात्मक,
जो दुनिया के बारे में तथ्य बताते हैं, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है.
सही, इन्हें जानने के लिए अनुभव की जरूरत होती है. क्विन ने तर्क दिया कि इन दोनों के बीच कोई साफ सैद्धांतिक लाइन खींचना मुमकिन ही नहीं है.
लेकिन क्यों? ये तो काफी अलग तरह के वाक्य लगते हैं, एक परिभाषा जैसा, दूसरा तथ्य जैसा.
क्विन के विश्वास के जाल वाले मॉडल से देखिए, उनका कहना था कि कोई भी कथन, चाहे वो कितना भी परिभाषा जैसा क्यों ना लगे, जैसे वही सभी कुआरे अविवाहित हैं, वो भी अनुभव के भारी दबाव में बदला जा सकता है.
कैसे?
मान लीजिए हम किसी ऐसे समाज में पहुंच जाएं जहां कुआरा शब्द का प्रयोग किसी खास सामाजिक दर्जे वाले शादीशुदा आदमी के लिए भी होता हो, तो हमें अपनी परिभाषा बदलनी पड़ेगी, है ना?
हाँ, बदलनी पड़ेगी.
तो क्वीन के लिए ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विश्वासों के जाल में कहां और कितना बदलाव करने को तैयार हैं. कुछ विश्वास जाल के केंद्र में होते हैं, जैसे तर्क के नियम, उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है और उसके नतीजे दूर तक जाते हैं।
और कुछ किनारे पर होते हैं, जैसे मेज पर किताब है।
हाँ, जिन्हें बदलना आसान होता है, लेकिन ये सिर्फ मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। कोई भी कथन पूरी तरह अनुभव से अछूता नहीं है।
वाह, यानी जिसे हम सिर्फ परिभाषा का सच मानते थे, वो भी असल में दुनिया के अनुभव से पूरी तरह कटा हुआ नहीं है। ये तो दर्शन की एक बहुत पुरानी और गहरी मान्यता पर सीधी चोट थी।
बिल्कुल।
और दूसरा बड़ा क्रांतिकारी विचार कौन सा था?
दूसरा बड़ा विचार है अनुवाद की अनिर्धारणता।
अच्छा।
इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रांसलेशन का सिद्धांत।
अच्छा।
इसे उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब शब्द और वस्तु,
जी,
वर्ड एंड ऑब्जेक्ट, जो 1960 में आई, में विस्तार से समझाया।
इसका क्या मतलब है? क्या ये भाषा विज्ञान से जुड़ा है?
हाँ, ये भाषा, अर्थ और वास्तविकता के रिश्ते पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्विन ने एक विचार प्रयोग, एक थॉट एक्सपेरिमेंट रखा, जिसे रैडिकल ट्रांसलेशन कहते हैं।
रैडिकल ट्रांसलेशन?
हाँ, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी बिल्कुल अनजान आदिवासी भाषा का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आपकी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, और आपके पास कोई डिक्शनरी या दुभाषिया नहीं है।
सिर्फ लोगों को बोलते और व्यवहार करते हुए देख सकते हैं।
बिल्कुल, सिर्फ उनके हाव भाव और व्यवहार को देखकर आपको समझना है। क्विन का तर्क है कि इस स्थिति में आप जितने भी सबूत इकट्ठा कर लें, हमेशा एक से ज्यादा आपस में विरोधी, लेकिन उन सबूतों के आधार पर समान रूप से सही लगने वाले अनुवाद संभव होंगे।
क्या मतलब? एक ही वाक्य के कई सही पर अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, और हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि असली मतलब कौन सा है।
हाँ, सिर्फ व्यावहारिक सबूतों के आधार पर। इसका गहरा दार्शनिक मतलब ये निकलता है कि वाक्यों का कोई एक निश्चित अंदर छुपा हुआ असली अर्थ नहीं होता जो व्यवहार और संदर्भ से परे हो।
तो अर्थ कहाँ होता है?
अर्थ हमेशा संदर्भ, व्यवहार और हमारी जो अनुवाद की स्कीम है उस पर निर्भर करता है, और ये कभी पूरी तरह से निर्धारित या फिक्स नहीं होता।
ये तो भाषा और संवाद की हमारी सहज समझ को हिला देता है। मतलब जब हम बात करते हैं तो क्या हम वाकई एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाते हैं? खैर, और क्या मुख्य विचार थे क्विन के?
एक और महत्वपूर्ण विचार है प्राकृतिकृत ज्ञानीमीमांसा,
नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी।
ज्ञानीमीमांसा यानी ज्ञान का सिद्धांत।
हाँ, क्विन का मानना था कि ये सवाल कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये दार्शनिक अटकलों से हल नहीं होगा।
तो फिर कैसे होगा? इसके बजाय हमें इसे एक वैज्ञानिक प्रश्न की तरह देखना चाहिए। मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइंस जैसे जो अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल विज्ञान है, उनकी मदद से इसका अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का अध्ययन लैब में होना चाहिए, आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं।
ये उनके प्रकृतिवाद वाले विचार से जुड़ता है ना?
बिल्कुल।
और आपने शुरू में सत्तामूलक प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया था, वो क्या था?
हाँ, वो भी उनके प्रकृतिवाद से ही जुड़ा हुआ है। क्विन ने अपने 1948 के निबंध क्या है पर, ऑन व्हाट देयर इज, में ये सवाल उठाया कि हम कैसे तय करते हैं कि कौन सी चीजें वास्तव में मौजूद हैं।
अच्छा, अस्तित्व का सवाल।
हाँ, और उनका जवाब विज्ञान से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि हमारी सत्तामूलक प्रतिबद्धताएं, यानी हम किन चीजों के अस्तित्व को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये इस बात से पता चलता है कि हमारे सबसे अच्छे, सबसे सफल वैज्ञानिक सिद्धांत किन चीजों के अस्तित्व को मानते हैं।
उदाहरण के लिए,
जैसे अगर हमारी भौतिकी की सबसे अच्छी थ्योरी काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स या स्ट्रिंग्स जैसी चीजों को मानना जरूरी समझती है, तो हमें भी उनके अस्तित्व को मानना चाहिए।
तो क्या उनका वो मशहूर सूत्र होना एक बाध्य चर का मान होना है, टू बी इज टू बी द वैल्यू ऑफ अ बाउंड वेरिएबल, इसी से जुड़ा है? ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है।
बिल्कुल, ये उसी विचार का तकनीकी तार्किक सूत्रीकरण है। सरल भाषा में कहें तो जिन चीजों को हमारे सर्वोत्तम वैज्ञानिक सिद्धांत अनिवार्य मानते हैं, जिन्हें वो अपने गणितीय या तार्किक ढांचे में चर या वेरिएबल के मान के रूप में रखते हैं, उन्हीं के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं।
ये तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स में वैज्ञानिक सिद्धांतों को केंद्रीय भूमिका देने का एक तरीका है।
सही कहा।
चलिए अब उनके प्रमुख कार्यों को संक्षेप में देख लेते हैं। अनुभववाद के दो हठ धर्मिता और शब्द और वस्तु का जिक्र तो हो गया, और कौन सी कृतियां महत्वपूर्ण हैं?
क्या है? पर क्विन ने तो आधुनिक तत्वमीमांसा की दिशा ही बदल दी। फिर जे एस उलियन के साथ लिखी विश्वास का जाल, द वेब ऑफ बिलीफ, 1970, उनके समग्रतावादी सिद्धांत का एक बहुत ही सरल और सुलभ परिचय है। छात्रों में काफी लोकप्रिय हुई ये किताब।
अच्छा।
इसके अलावा सत्तामूलक सापेक्षता और अन्य निबंध, ऑन्टोलॉजिकल रिलेटिविटी एंड अदर एसेज, 1969, भी अहम है। इसमें वो इस विचार को और विकसित करते हैं कि अस्तित्व का सवाल हमेशा किसी न किसी पृष्ठभूमि सिद्धांत या फ्रेमवर्क के सापेक्ष ही मायने रखता है।
अगर हम क्वीन की तुलना उनके कुछ बड़े समकालीनों से करें तो मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं, जैसे उनके शुरुआती प्रेरणा स्रोत और बाद के प्रतिद्वंद्वी कार्नैप से?
कार्नैप, जैसा हमने कहा, तार्किक प्रत्यक्षवाद के एक प्रमुख स्तंभ थे। वो दर्शन में एक बहुत ही कठोर तार्किक ढांचा बनाना चाहते थे। क्विन ने वहीं से शुरुआत की, लेकिन फिर उसी ढांचे की नींव पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कार्नैप के बनाए चस्कों जैसे विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक को धुंधला कर दिया और एक ज्यादा लचीला विज्ञान आधारित यानी प्रकृतिवादी और ज्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया।
और बर्ट्रंड रसल या लुडविग विटगेंस्टाइन जैसे दार्शनिकों से वे कैसे अलग थे?
रसल और शुरुआती विटगेंस्टाइन और प्रत्यक्षवादी भी ज्ञान को छोटी छोटी बुनियादी इकाइयों पर आधारित मानते थे, जैसे संवेदी अनुभव या तार्किक परमाणु। इसे ज्ञान का परमाणुवादी, एटमिस्टिक और नीववादी नजरिया कहते हैं।
और क्विन ने इसे नहीं माना?
बिल्कुल नहीं। क्विन ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और समग्रतावाद, होलिज्म पर जोर दिया, जहां पूरा विश्वास का जाल एक साथ अनुभव का सामना करता है। कोई एक अकेली ईंट नींव का काम नहीं करती।
और विटगेंस्टाइन से?
जहां तक बात के विटगेंस्टाइन की बात है, तो विटगेंस्टाइन का ध्यान साधारण रोजमर्रा की भाषा के अलग अलग उपयोगों पर था, जबकि क्विन मुख्य रूप से वैज्ञानिक भाषा की संरचना और उसके तार्किक विश्लेषण पर केंद्रित रहे। उनके फोकस अलग थे।
तो कुल मिलाकर देखें तो क्विन की स्थायी विरासत क्या है, दर्शन पर उनका असर कितना गहरा रहा है?
देखिए, क्विन को 20वीं सदी के उत्तरार्ध के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में गिना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है।
हाँ।
उनके काम ने तार्किक प्रत्यक्षवाद का जो दबदबा था उसे खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनका प्रकृतिवाद, समग्रतावाद और विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक भेद की आलोचना, ये विचार आज समकालीन विश्लेषणात्मक दर्शन में इतने रच बस गए हैं कि इन्हें लगभग मानक स्थिति माना जाता है।
भले ही उन पर बहसें आज भी जारी हैं।
हाँ, बहसें तो जारी हैं, लेकिन उनका महत्व निर्विवाद है।
और क्या आज के दौर में दर्शन के बाहर भी उनके विचार प्रासंगिक हैं?
बिल्कुल। दर्शन शास्त्र की कई शाखाओं में, जैसे ज्ञान मीमांसा, भाषा का दर्शन, विज्ञान का दर्शन, मन का दर्शन, उनके विचार आज भी केंद्रीय बहस का हिस्सा हैं। और इसके साथ ही संज्ञानात्मक विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भी उनके काम का असर दिखता है, खासकर भाषा, अर्थ और ज्ञान की संरचना को समझने के मॉडल्स पर।
और उनकी वो बात कि हमारा अवलोकन भी हमारे सिद्धांतों से प्रभावित होता है।
हाँ, द थियरी लेडननेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हम दुनिया को एकदम निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि अपनी मौजूदा समझ के चश्मे से देखते हैं। ये अंतर्दृष्टि आज भी विज्ञान और ज्ञान की समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए उनके कुछ प्रसिद्ध उद्धरणों को एक बार फिर याद करते हैं। अब शायद हम उनके पीछे की गहराई को बेहतर समझ पाएंगे। पहला, विज्ञान का दर्शन ही पर्याप्त दर्शन है।
ये उनके प्रकृतिवादी कार्यक्रम का निचोड़ है। दर्शन को विज्ञान का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, न कि उससे कटकर अलग रहना चाहिए।
दूसरा, हमारे बाहरी दुनिया के बारे में कथन संवेदी अनुभव की अदालत का सामना व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक सामूहिक निकाय के रूप में करते हैं।
ये उनके समग्रतावाद या विश्वास के जाल मॉडल का दिल है। कोई एक विश्वास अकेले सच्या थ्रूट साबित नहीं होता, बल्कि पूरी ज्ञान प्रणाली मिलकर अनुभव की चुनौती का सामना करती है।
और तीसरा, होना एक बाध्य चर का मान होना है।
ये उनकी सत्ता मूलक प्रतिबद्धता की कसौटी है। ये तय करने का एक तार्किक तरीका कि हमें किन चीजों के अस्तित्व को गंभीरता से लेना चाहिए, वही चीजें जिनके अस्तित्व को हमारे सबसे अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत अनिवार्य मानते हैं।
जाहिर है, इतने क्रांतिकारी और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाले विचारों की आलोचना भी हुई होगी।
निश्चित रूप से बहुत हुई, जैसे विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक भेद के उनके खंडन की एचपी ग्रिस और पीएफ स्ट्रॉसन जैसे बड़े दार्शनिकों ने आलोचना की।
क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि भाई, ये भेद भले ही पूरी तरह साफ न हो, फिर भी भाषा को समझने में उपयोगी है, इसे पूरी तरह खारिज करना ठीक नहीं है।
और भाषा के बारे में उनके विचारों पर, खासकर अनुवाद की अनिर्धारणता, ये तो ऐसा लगता है कि संवाद की संभावना पर ही सवाल उठाता है।
हाँ, भाषा के उनके व्यवहारवादी नजरिए की खासकर नॉम चॉम्स्की ने बहुत तीखी आलोचना की।
चॉम्स्की ने?
हाँ, चॉम्स्की का तर्क था कि सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखकर भाषा की जटिलता, उसकी रचनात्मकता और सीखने की जो अद्भुत क्षमता है बच्चों में, उसे नहीं समझा जा सकता। और अनुवाद की अनिर्धारणता का सिद्धांत भी बहुत विवादास्पद रहा है। आलोचक कहते हैं कि ये हमें अर्थ के बारे में एक अजीब किस्म के संदेहवाद या सापेक्षवाद की ओर ले जाता है, जहाँ कोई भी मतलब पक्का नहीं रह जाता।
हालांकि क्विन खुद ऐसा नहीं मानते थे।
नहीं, क्विन खुद को वैज्ञानिक यथार्थवादी मानते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि सब कुछ सापेक्ष है। उनका तर्क ज्यादा सूक्ष्म था।
और उनके प्रकृतिवाद की भी आलोचना होती है।
हाँ, कुछ आलोचक कहते हैं कि अगर दर्शन सिर्फ विज्ञान का हिस्सा है तो वो मानक नॉर्मेटिव कैसे तय कर सकता है। मतलब दर्शन ये कैसे बता सकता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए या क्या मानना चाहिए।
अच्छा, विज्ञान बताता है कि चीजें कैसी हैं।
हाँ, पर दर्शन ये भी बताता है कि वे कैसी होनी चाहिए। तो कुछ का मानना है कि क्विन का प्रकृतिवाद इस होनी चाहिए वाले पहलू को कमजोर करता है।
चलिए अब कुछ हल्की फुल्की रोचक बातें क्विन के बारे में जानते हैं। सुना है वे दुनिया घूमने के बड़े शौकीन थे।
हाँ, वे एक असाधारण यात्री थे। कहते हैं 117 देशों की यात्रा की उन्होंने।
117?
हाँ, और जैसा हमने पहले जिक्र किया, वे अपनी यात्रा डायरियों में अक्सर हाथ से नक्शे बनाते थे।
उनके भूगोल प्रेम और व्यवस्थित दिमाग का सबूत।
बिल्कुल
व्यवस्थित। क्या वे बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंसान थे?
बेहद। कहा जाता है कि वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का भी बहुत डिटेल्ड लॉग या रिकॉर्ड रखते थे।
अच्छा।
फोटोग्राफी और डाक टिकट संग्रह के भी शौकीन थे, और इन शौकों को भी वे अपनी खास व्यवस्थित सटीकता से ही करते थे।
हार्वर्ड में छात्र उन्हें प्यार से वैन कहकर बुलाते थे।
हाँ, वैन।
और अनुवाद की अनिश्चितता पर इतना लिखने के बावजूद क्या उन्हें खुद कुछ भाषाएं आती थीं?
ये विडंबना देखिए। अनुवाद की सैद्धांतिक मुश्किलों पर लिखने के बावजूद उन्हें पुर्तगाली समेत कई भाषाओं का काम चलाओ ज्ञान था।
अच्छा, पुर्तगाली कैसे सीखी?
उन्होंने ब्राजील में पढ़ाया था, वहीं सीखी थी।
उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी सूखा और बौद्धिक किस्म का था। उनका एक मजेदार कथन है, मुझ पर चेतना से इनकार करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन मुझे ऐसा करने का होश नहीं है।
बिल्कुल। आई हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डिनाइंग कॉन्शियसनेस, बट आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ हैविंग डन सो। वे अपनी बातों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी के लिए जाने जाते थे।
तो इस पूरी ज्ञानगोष्ठी के बाद क्विन के विचारों से जुड़ा एक अंतिम विचार या सवाल जो हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है।
क्विन का वो जो विश्वास का जाल वाला विचार है, वो हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा करता है।
क्या?
अगर हमारा कोई भी विश्वास, यहाँ तक कि सबसे बुनियादी लगने वाला विश्वास भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, और हमारे ज्ञान की पूरी इमारत अनुभव के आधार पर लगातार बदल सकती है, उसमें सुधार हो सकता है, तो फिर निश्चित ज्ञान या अंतिम सत्य जैसी चीजों का क्या मतलब रह जाता है? क्या हमारे सबसे मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत या सबसे गहरे दार्शनिक सत्य भी सिर्फ अस्थायी ढांचे हैं जो किसी नए अनुभव या बेहतर समझ के इंतजार में हैं?
ये सचमुच सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। ये हमें अपनी मान्यताओं पर लगातार सवाल उठाते रहने और ज्ञान की यात्रा को कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने की चुनौती देता है।
बिल्कुल।
क्विन ने हमें सोचने के लिए जो औजार दिए, वे आज भी उतने ही पहने और प्रासंगिक हैं।
समापन कथन पहले से रिकॉर्ड किया हुआ।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।